सब लोग प्रणाम करें।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या है 26। आप लोग मेरे पीछे बोले ठीक है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ये शब्द भगवान के मुख से निकले हैं इसलिए बहुत सरल हैं। भगवान के मुख से जो कुछ निकलता है वो बहुत सरल होता है ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए बहुत सरल शब्द हैं भगवान के। सब लोग मेरे पीछे बोले अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। ऐसा लगता है जैसे बहुत थोड़े लोग हों। मंदिर दिखाई दे रहा है पूरा भरा लेकिन आवाज इतनी थोड़ी सी लग रहा है कि बहुत थोड़े से लोग हैं मंदिर में। सब लोग बोलिए जोर से ऊंचे स्वर में बोलिए अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि।
शब्दार्थ
मेरे पीछे बोले, अथ यदि फिर भी च भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला नित्यम सदैव के लिए वा अथवा मन्यसे तुम ऐसा सोचते हो मृतम मृत तथा अपि फिर भी त्वं तुम महाबाहो हे शूरवीर ना कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान आज के श्लोक में एक दूसरा ही विषय ले रहे हैं। बहुत से श्लोकों में भगवान ने बताया कि जीव नष्ट नहीं होता है, लेकिन आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अगर ये भी मान लिया जाए, अगर ये भी मान लिया जाए तो भी तुम्हारे शोक करने का तो कोई कारण नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तो भी तुम्हारे शोक करने का तो कोई कारण है ही नहीं। सबसे पहले तो शोक करना सबसे ज्यादा अनुचित है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है, नहीं उससे भी ज्यादा जरूरी है शोक को छोड़ना। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो बहुत गलत है, अज्ञान तो बहुत गलत है, उससे भी ज्यादा गलत क्या है तुम्हारा शोक। अज्ञान में होते हुए भी अगर तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है आत्मा का, तुम नहीं समझते कि आत्मा नित्य है अमर है, अगर नहीं सोचते हो तो भी शोक करने का तो कोई कारण है ही नहीं। शोक तो सबसे ज्यादा गलत है, इसलिए भगवान जो है सबसे पहले तो अर्जुन के शोक पर प्रहार कर रहे हैं कि शोक तो तुम्हारा जो है हर हालत में अनुचित है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या होता है, आत्मा को नहीं मानते, और आज का विज्ञान भी नहीं आत्मा को नहीं मानता। आज का विज्ञान क्या मानता है, आत्मा कुछ नहीं है, शरीर में जीवन के लक्षण कुछ रासायनिक क्रिया से बन जाते हैं और कुछ रसायन की अनुपस्थिति से उस जीवन के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। बौद्ध धर्म भी नास्तिक, जब आत्मा ही नहीं है तो फिर ईश्वर की तो बात बहुत दूर है। अगर आप आत्मा को नहीं मानते, आप स्वयं अपने को नहीं मानते कि आप आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है, तो ईश्वर अगर हो भी तो उसकी फिर जरूरत ही क्या है। इस जीवन के बाद अगर आपका अगला जीवन ही नहीं है तो ईश्वर हो भी तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो दंड या पुरस्कार है वो दे नहीं सकते आपको, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे। तो फिर ईश्वर को मानने से और ईश्वर को ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप अपने को ही नहीं समझते कि आप अविनाशी हैं, इस जीवन के बाद अगला जीवन है, अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर ईश्वर को मानने की बात ही नहीं आती। तो बौद्ध धर्म नास्तिक है, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। बौद्ध धर्म में इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं माना जाता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, शरीर के अंदर कोई आत्मा है। और गीता क्या कहती है, शरीर के अंदर आत्मा जब आती है तभी शरीर जीवित होता है, और आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, आत्मा के कारण ही शरीर जीवित होता है, शरीर में चेतना आती है। लेकिन एक दूसरा दार्शनिकों का वर्ग है, लेकिन वे लोग भी शोक नहीं करते। अर्जुन क्यों शोक कर रहे हैं? तो भगवान ये कह रहे हैं कि उनका इतना अज्ञान, इतने अधिक अज्ञान में है, वे भी शोक नहीं करते। तो अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हैं? अगर तुम उनके अज्ञान के धरातल पर भी अगर आप विचार करें तो शोक करने की बात ही नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा व्यभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, अगला जीवन नहीं मानते। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। इस संप्रति अनेक छदम धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। जो बौद्ध हैं उनके कहते शून्यवादी, शून्य मतलब इस जीवन के बाद सब शून्य हो जाता है, ये शून्यवादी हैं। तो ये अज्ञान है, बहुत अज्ञान है, लेकिन ऐसे दार्शनिक हैं और वो हमेशा से ये मत चलता आ रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि व्यभाषिक दर्शन में होता है तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता कि शरीर क्या है, कुछ रसायनों का ही मिश्रण है ना, जैसे एक बोतल में कुछ केमिकल पड़े हों, ये शरीर भी इसी प्रकार का केमिकल की एक बोतल है, है? तो उसके नुकसान के लिए क्षति नहीं करता, उसके रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता और अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं, युद्ध में कितना रसायन केमिकल कितना जो है बर्बाद करते हैं, है ना। तो शरीर भी इसी प्रकार का केमिकल ही है, नष्ट हो गया बर्बाद हो गया तो क्या इसमें शोक करने की जरूरत है? आत्मा तो है ही नहीं, जब आत्मा नहीं मानते हैं तो इसके लिए फिर क्यों शोक करते हैं कि शरीर में जो है कुछ केमिकल थे ना। आगे व्यभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है, अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करते कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जीव का मतलब जीवन के लक्षण, जीवात्मा तो मानते नहीं, असंख्य जीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, यानी जीवन के लक्षण होते हैं और नष्ट होते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं है। अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है तो हत्या, गुरु की हत्या, ब्राह्मण की हत्या से भी डरने की फिर क्या आवश्यकता है? अर्जुन जो डर रहे हैं, अगर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं तो वे लोग नहीं मानते पुनर्जन्म है ही नहीं, अगला जन्म है ही नहीं, है ना। आगे किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उन्हें व्यभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। महाबाहु कहकर के, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से है और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो महाबाहु कहकर के भगवान अर्जुन को संकेत करते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की भुजाओं में ताकत होती है जिससे कि वो रक्षा कर सके, निर्बलों की रक्षा कर सके। तो क्षत्रिय जो है निर्बलों की रक्षा करता है, युद्ध में भाग लेता है। क्या तो कैसे युद्ध में भाग लेता है? शरीर में बल है, भुजाओं में बल है, अर्जुन के भुजाओं में बल है। तो इससे भगवान संकेत करते तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय हो तो तुम वैदिक धर्म का पालन करो, इस धर्म का पालन नहीं करो। कौन सा धर्म? नास्तिक धर्म, कि आत्मा नहीं होती। लेकिन फिर भी भगवान एक बात ये बता रहे हैं कि आत्मा अगर नहीं मानते हो कि आत्मा होती है तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक हर हालत में गलत है, शोक करना हर हालत में गलत है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस श्लोक पर जो हमने व्याख्या लिखी है बहुत विस्तृत है, तो सब तो कुछ तो नहीं हम पढ़ सकते, लेकिन कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान एक साधारण व्यक्ति के अज्ञान से निर्मित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि अर्जुन इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लें तो भी उनका शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर भगवान एक गलत सिद्धांत को लेकर भी ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अर्जुन का अपने संबंधियों की मृत्यु के लिए शोक करना उचित नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान ने जिस अनुचित सिद्धांत का यहाँ पर उल्लेख किया है उससे भी अनुचित अर्जुन का शोक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि अर्जुन ये भी मान लें कि जीवात्मा सदा जन्म लेता और सदा मरता है तो भी किसी की मृत्यु पर अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तक भगवान ने आत्मज्ञान के आधार पर अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दिया, परंतु अब भगवान इस श्लोक में अज्ञान के आधार पर भी अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। भगवान का कहना है कि यदि अर्जुन जीवात्मा को शरीर के ही साथ उत्पन्न होने वाला और शरीर के ही साथ मरने वाला मान लें तो भी उनको इस प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब सुने बड़े ध्यान से, 30 नवंबर 1972 को हैदराबाद में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था कहाँ पर? हैदराबाद में। आजकल के वैज्ञानिकों का भी यही विचार है कि शरीर के अंदर जीवात्मा जैसी अलग से कोई भी वस्तु नहीं है। आज का विज्ञान क्या कहता है कि शरीर के अंदर कोई जीवात्मा जैसी वस्तु नहीं है। उन्होंने सब देख लिए, खूब माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से सब छान लिया, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है शरीर में। भी सोचते हैं कि एक विशेष स्थिति में पदार्थों के संयोग से जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसमें शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि अनेक रसायनों का संयोग है, अतः शरीर के नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। जीवात्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं है, ये उनका विचार है। तो तर्क तो देश से श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम इस प्रकार भी सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है तथा किसी विशेष स्थिति में भौतिक तत्व संयुक्त होते हैं और बाद में वे वियुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, तो तर्क के उद्देश्य से कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है तो शरीर तो स्वतः नष्ट हो जाएगा, जैसे रसायनों से भरी बोतल किसी न किसी प्रकार से वो नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए कोई कौन शोक करता है? आप दूसरी बोतल खरीद सकते हो। पहले केमिकल की बोतल आती थी, कांच कांच की बोतल होती थी, और जैसे वो गिरी तो टूट जाती थी। आजकल तो प्लास्टिक में होते हैं, बस केमिकल जो है प्लास्टिक की बोतल में होते हैं, पहले कांच की बोतल में होते थे, तो बड़ी जल्दी थोड़ा सा वो गिर जाए तो निश्चित रूप टूट जाती थी। तो आप दूसरी बोतल खरीद सकते हो, ये बात केवल तर्क के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण कह रहे हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है,
परंतु अब यदि आप सोचते हैं कि रसायनों के संयोग से जीवन उत्पन्न हो सकता है तो आप क्यों नहीं प्रयोगशाला में ऐसा करते। प्रभुपाद आप चुनौती देते हैं वैज्ञानिकों को, क्या कि अगर अगर रसायनों के संयोग से ही जीवन उत्पन्न होता है तो प्रयोगशाला में आप जीवन क्यों नहीं उत्पन्न करते। रसायन तो पहले से ही हैं, आप इन रसायनों को संयुक्त करके एक चींटी भी उत्पन्न करके दिखाइए। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, चुनौती वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहे हैं, एक चींटी पैदा करके दिखाओ। रसायनों को मिला करके एक चींटी पैदा करके दिखलाओ, तब ये विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है निरीक्षण और प्रयोग। तो यदि आप केवल निरीक्षण करते हैं परंतु इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो ये विज्ञान नहीं है, ये तो केवल सिद्धांत है जो संभव नहीं है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने प्रयोगशालाओं में रसायनों के संयोग द्वारा कोई भी जीवात्मा तैयार नहीं की है, इसे कोई नहीं कर सकता। इस अज्ञान के कारण किस जीवन के बाद कोई भी जीवन नहीं है, ये मानव समाज घोर पतन की ओर जा रहा है। आप समझ रहे, सबसे बड़ा जो पतन का कारण है वो क्या है, अज्ञान। कौन सा ज्ञान, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। आज की शिक्षा में इस ज्ञान के कारण धर्म का कोई महत्व नहीं रह गया है। धर्म का महत्व हो ही कैसे सकता है, धर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जिनको करने से हमें अगले जीवन में सुरक्षा तथा सुख प्राप्त हो। परंतु जब आज के शिक्षित लोग अगला जीवन मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो फिर धर्म तो एक मनोरंजन की बात से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगला जीवन ही नहीं है तो फिर धर्म की बातें क्या हो गई, केवल मनोरंजन की है। यदि इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है तो धर्म और ईश्वर को मानने या मानने से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भारत सरकार क्या है, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष राज्य। क्या अगला जीवन है ही नहीं, भारत सरकार का कहना है अगला जीवन है ही नहीं, तो आप धर्म माने या ना माने ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा पतन का कारण है। मतलब फिर मनुष्य का समाज नहीं रह गया, पशुओं का समाज। और पशु तो जो है नरक में नहीं जाएंगे, उनका तो पाप नहीं बनता है, उनके तो कोई कर्म नहीं बनते हैं। ये मनुष्य जीवन में जब आप ऐसा अज्ञान अपनाते हैं तो आपके बहुत बुरे कर्म बनते हैं और आप नरक में जाते हैं। पशु पक्षी की योनि में भी जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, कैसी कैसी गतियां प्राप्त करेंगे। पशु नहीं मानते अगला जीवन तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, अभी तो मनुष्य योनि में आएंगे, अपने कर्म भोग करके मनुष्य योनि में आएंगे। लेकिन मनुष्य जब इस अज्ञान को स्वीकार करता है तो पशु पक्षी की योनि में भी जाएगा और नरक में भी जाएगा। पतन जब ये माना जाता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है तो फिर यह भी माना जाता है इस जीवन में धर्म का पालन करने से अगले जीवन में हमें ईश्वर के द्वारा पुरस्कार के रूप में अनेक प्रकार के सुरक्षाएं तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और व्यक्ति ये भी समझ सकता है कि धर्म के नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए। इस प्रकार व्यक्ति अत्यंत सच्चाई से विचार करता है कि यदि मैं ईश्वर के आदेशों का तथा ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का इस जीवन में पालन करूंगा केवल तभी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो सकता है और मुझे अगले जीवन में सुरक्षा तथा सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। परंतु जब व्यक्ति ये मानता है कि जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है तो वो विचार करता है कि जब अगला जीवन ही नहीं है तो फिर यदि ईश्वर हो भी और यदि मैंने इस जीवन में ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन भी किया हो तो भी क्या लाभ है, अगला जीवन ही नहीं है। क्योंकि जब इस जीवन के बाद मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर ईश्वर किसे सुरक्षा तथा सुविधाएं प्रदान करेगा, तो फिर क्यों मानूं, ईश्वर के नियमों का पालन क्यों करूं, अगला जीवन है ही नहीं, फायदा क्या है। नास्तिक चारवाक, सुना चारवाक, नास्तिक चारवाक का नाम सुना, किसने सुना, हाथ उठाइए, बहुत कम लोगों ने सुना चारवाक। महाभारत में वर्णन है कि एक चारवाक नामक ब्राह्मण दुर्योधन का मित्र था, वो ऐसा ही नास्तक था। इसको उसके उपदेशों में से एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, चारवाक का एक श्लोक है, वो क्या है, यावत जीवे सुखं जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। जब तक ये जीवन है तब तक सुखपूर्वक जियो। नास्तिक चारवाक का सिद्धांत क्या है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के भी घी पियो, ऋण लेकर के भी घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, भस्मी भूतस्य देहस्य, जब शरीर भस्म हो जाएगा तो दोबारा जन्म किसका होगा, जब शरीर ही जल जाएगा तो दोबारा जन्म किसका होगा, तो फिर कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि भाई हमने किसी का कर्जा लिया है तो वो हमें चुकाना पड़ेगा, क्या है कुछ भी नहीं है, कर्जा लेकर के मर जाओ क्या है चारवाक तो ये चारवाक का सिद्धांत है ना। तो इस तरह से जो सिद्धांत है ये चले आ रहे हैं। प्राचीन वैदिक जीवन की पद्धति अत्यंत सरल थी, परंतु विचारों की पद्धति बहुत ऊंची थी, उसे क्या बोलते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति जीवात्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझता था, एक बच्चा बच्चा समझता था अगला जीवन है, बच्चे को भी सिखाया जाता था कि नहीं नहीं ये पाप नहीं करना, अगले जन्म में ये कष्ट भोगना पड़ेगा, अगला जन्म तुम्हें पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा, नरक जाएंगे, बच्चे को भी जो है सिखाया जाता था, सामान्य ये जो है बात सामान्य बात थी पहले के समय में। तथा वे लोग अपने जीवन में ऐसे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते थे जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में कष्ट और असुविधाएं प्राप्त होंगी, इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। आप पाप से डरते हैं है? शास्त्रों में जिन पापों की सजा बताई गई है कि अगले जीवन में ये सजा मिलती है, और आप डर करके वे पाप नहीं करते हैं तो आपका जीवन सादा होता है और विचार ऊंचे हैं, ये ऊंचे विचार कहलाते हैं, विचार ऊंचे हैं और जीवन सादा, फिर पाप ना करो हम सादा जीवन जी लेंगे लेकिन पाप नहीं करेंगे, है ना, इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। परंतु आधुनिक युग में जीवन बहुत ऊंचा है, सादा जीवन नहीं है, ऊंचा जीवन और विचार क्या है, सादे ऊंचा जीवन सादा विचार, जीवन बहुत ऊंचा है, सभी लोग अपना घर राजा के महल के समान बनाना चाहते हैं, और राजा के समान चार पहिए की गाड़ी में बैठकर चलना चाहते हैं सब राजा हैं। पहले एक राजा होता था जो रथ पर चलता था, चार पहिए वाले या दो पहिए वाले रथ में चलता था, फिर अभी तो सब राजा हैं है? सभी गाड़ी में चलते हैं, चार पहिए वाली गाड़ी में चलते हैं, परंतु लोगों के विचार बिल्कुल साधारण, लोग सोचते हैं ये जीवन शरीर के साथ पैदा होता है और जीवन शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, इसे कहते हैं ऊंचा जीवन सादा विचार, विचार बिल्कुल सादा है ना? तो अभी तक भगवान अर्जुन के शोक को ऊंचे विचारों के द्वारा दूर कर रहे थे, परंतु अब भगवान सादे विचारों के द्वारा अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमने आज के श्लोक पर चर्चा की है। तो इस विषय में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न पूछूं? मैं प्रश्न पूछूं? ठीक है, मैं प्रश्न पूछूं। देखिए प्रभुपाद बताते हैं कि पुराने समय से ही कुछ ऐसे लोगों का वर्ग रहा जो कि अगले जीवन को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते, शरीर में आत्मा है और आज का जो विज्ञान है वो भी नहीं मानता कि आत्मा है। तो इस विषय में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसका क्या मानना है, बौद्ध धर्म कौन बताएगा, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, आत्मा है नहीं, नहीं है, बौद्ध धर्म के अनुसार है आत्मा, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं है, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता, बौद्ध धर्म को कहा जाता है शून्यवादी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन्हें कहा जाता है शून्यवादी। शून्यवादी का मतलब क्या है कि जीवन के बाद क्या होता है, सब शून्य हो जाता है, कोई जीवन नहीं है, है ना, बौद्ध धर्म। और आज का विज्ञान भी आज का विज्ञान भी क्या मानता है, यही यही बात मान रहे हैं, आत्मा नहीं है। आज के जो वैज्ञानिक हैं ये आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा है, है? तो हमारा ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन है ये इस के विरोध में है। ये आंदोलन जो है घोर विरोध करता है, चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन हम चुनौती देते हैं। ये जो आंदोलन है ये निर्भीक आंदोलन है। हम ये नहीं कहते कि आज का विज्ञान है देखो इतना तरक्की कर ली है, क्या क्या चीजें बन गई हैं, कंप्यूटर है और सेलफोन है, मोबाइल है, क्या क्या चीजें बन गई हैं, है ना। तो हम जो है उनके इस अज्ञान को भी जो है मान लें कि ना, फिर तो ठीक है भाई, जब वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं जो पहले कभी थी नहीं। मोबाइल में देखो कैसे बातें कर रहे हैं, चलते सड़क में चलते चलते बातें कर रहे हैं, बम्बई बम्बई में भी किसी से बात कर रहे हैं, अमेरिका में किसी से बात कर रहे हैं, सड़क में चलते चलते बातें कर रहे हैं। आज का विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है। तो फिर आज के विज्ञान में अगर यही माना जाता है कि आत्मा नहीं है तो फिर ठीक है भाई, आत्मा नहीं है, क्या विचार है, ठीक है, सही है, नहीं सही नहीं है। उन्होंने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं, तो प्रभुपाद को क्या कहते हैं, पशु। लेकिन पशु तो नहीं कह सकते हैं, ये पशु तो जो है, पशु तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पशु तो जो है आजकल की मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो वैज्ञानिकों ने बनाई है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उनको शिक्षित पशु। क्या है वो, शिक्षित पशु हैं। ये चार पैर के जो है पशु हैं अशिक्षित पशु हैं, लेकिन ये दो पैर के क्या हैं, शिक्षित पशु हैं, है ना। तो अशिक्षित पशु से शिक्षित पशु तो अच्छे हैं लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं है। शिक्षित पशु होने से ज्यादा अच्छा है अशिक्षित रहे मनुष्य, ये मनुष्य बने, क्या विचार है। शिक्षित पशु बनना ज्यादा अच्छा है या अशिक्षित बने रहें लेकिन मनुष्य बन जाएं, क्या चाहे, अशिक्षित रहें लेकिन मनुष्य बन जाएं वो ज्यादा अच्छा है, या बहुत शिक्षित हो जाएं लेकिन क्या बने, पशु, क्या ठीक है, क्या ठीक है, अशिक्षित रहें लेकिन मनुष्य तो बने। मनुष्य बनने के लिए आवश्यक बात समझना क्या है, अगला जीवन है, अगला जीवन है और हमारे कर्मों के अनुसार अगला जीवन बनता है, तो हमें क्या कर्म करना है, हमें डरना पड़ेगा, हमें डर के रहना है, हैं? भैया 10 लाख रुपए का जो है फायदा होगा, मैं जो है किसी की पॉकेट मार लूं, लेकिन इससे हमें अगला जन्म में भोगना पड़ेगा, हैं? तो क्यों, रूखा सूखा खा करके, ठंडा पानी पी करके अपना जीवन बिता लो, ये सब काम गलत काम क्यों करें। अशिक्षित मनुष्य, तो मनुष्य उसने विज्ञान नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, अशिक्षित है, ये मनुष्य है, सादा जो है जीवन है और ऊंचे विचार है, भाई ये सब गलत काम क्यों करें। छिप करके भी अगर करेंगे तो भी वो नोट करने वाला नोट कर रहा है, हा? उसका दंड मिलेगा, अगला जीवन तो है, अगला जीवन तो है, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है, कलयुग जो है बहुत खतरनाक युग है, बहुत खतरनाक युग है, कि कलयुग में ही अज्ञान पैदा होता है। तो कलयुग के अज्ञान के विरुद्ध ही ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन क्या कर रहा है, आंदोलन है ये आंदोलन, आंदोलन मूवमेंट, लोगों को जगाना कि जागो, इस अज्ञान को छोड़ो। तो इस तरह से, और भगवान जो है अर्जुन से जो बात बता रहे हैं वो तो अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए कहते हैं कि इसमें भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जो है इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कि हमें सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि शरीर में जो जीव है वो नष्ट नहीं होता है, शरीर में के अंदर जो जीव है वो नष्ट नहीं होता है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है ना। अगर हम नहीं समझते कि अगला जीवन है, तो अगर मान लीजिए कि कोई ईश्वर है भी, और कोई ईश्वर है भी, अब अगला जीवन तो है नहीं, हमारा अगला जीवन तो है ही नहीं, अब कोई ईश्वर है भी तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, ईश्वर को माने या ना माने क्या फर्क पड़ेगा? अगला जीवन नहीं है, अगला जीवन है ही नहीं, तो वे लोग हमारी निंदा करते हैं, ये हरे कृष्ण वाले जो है बेकार में अपना सर फोड़ रहे हैं इतना, सवेरे सवेरे उठना है, अपना जप करना है, मंगल आरती करना, स्नान करना, इतने ठंड में स्नान करना, इतना सब जो है ये सब बेकार का काम है। अब अगला जीवन अगर है ही नहीं तो सब बेकार की बात है, क्यों इतना हम लोग जो है मर रहे हैं, इतना सर क्यों फोड़ रहे हैं अपना, इतनी ठंड में है ना, गर्मी में ठंड में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, और हरे कृष्णा करते हैं, इतना दिमाग रगड़ रहे हैं हरे कृष्णा में क्या जरूरत है? अगर मरने के बाद जीवन है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं, तो उनका यही कहना है कि ये हरे कृष्णा वाले जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर अगला जीवन नहीं है तो हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जितना जीवन के सुख हैं वो सब जो है हम त्याग रहे हैं, सब सुखों को त्याग रहे हैं, तो इस जीवन में एक मौका मिला था कुछ सुख भोगने का, इंद्रिय तृप्ति करने का, वो हमने सब छोड़ दिया, बेकार, वो जीवन भी बेकार, अगला जीवन है ही नहीं, एक बार तो मनुष्य जीवन मिला एक बार तो मनुष्य जीवन मिला है, पहले भी कभी जीवन नहीं था, पहले भी हमारा कोई जीवन नहीं था, पहले भी कोई जीवन नहीं था और आगे भी कोई जीवन नहीं है, बस इसी एक जीवन मिला, केवल एक जीवन मिला है, बस ना पहले हम थे और ना इस जीवन के बाद हम रहेंगे, केवल एक जीवन मिला है और ये जीवन भी बर्बाद कर दिया, हरे कृष्ण वाले जो है अपने इसी जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं, और वे लोग अपने जीवन का खूब फायदा उठा रहे हैं, क्यों सोचे हैं कि कभी मृत्यु होगी, वो कहते हैं फिर जो है ये मरने की बात नहीं सोचना चाहिए, जब तक जियो तब तक सुख से जी लो, कि मरना तो है ही है और मरने के बाद जीवन कोई है ही नहीं तो क्या करो, तो क्यों जो है इसमें अपना सर खपाओ कि मर जाएंगे क्यों? लेकिन अगला जीवन है तो हम मृत्यु की बात करते हैं और बहुत जो है उत्साह पूर्वक करते हैं मृत्यु के बाद, क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद हमको अगला जीवन बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो हम बड़े उत्साह पूर्वक मृत्यु की बात करते हैं कि जीवन के बाद तो जो है कितना सुख है, कितना आनंद है, और भगवान की संगति मिलेगी, भगवान की सेवा मिलेगी, डायरेक्ट भगवान की सेवा मिलेगी, तो हम लोग बहुत उत्साहित होकर के करते हैं, हमें बड़ा उत्साह होता है कि जैसे ही शरीर छूटेगा तो सीधे भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, कितना सुख है, कितना आनंद है ना। लेकिन उनका कहना है कि ये लोग बेकार अपना जो है जीवन बेकार कर रहे हैं, अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर वे कहते हैं कि अगला जीवन नहीं है तो इस विषय में आपका क्या उत्तर है? आप उनकी बात मान लेंगे, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर वो कहते हैं अगला जीवन नहीं है, आप लोग क्यों अपना जो है ये जीवन का सब सुख छोड़ करके और इतनी तपस्या कर रहे हो, 4 नियम, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, ये सब सुख तो तुमने छोड़ दिए, फिर क्या जीवन रहा, जीवन में फिर सुख क्या रहा? तो आपके पास क्या उत्तर है? अगले जीवन के विषय में आपके पास कोई है उत्तर है अगला जीवन है इस विषय में? कौन बताए अगले जीवन की सूचना के लिए आपके पास कोई प्रमाण है, कोई उत्तर है? कौन बताएगा? हाँ जी,
भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे जन्म होता है फिर मृत्यु होती है।
भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है, तो वो भी तो कहते हैं जन्म मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है। आत्मा का जन्म हुआ, शरीर के साथ हमारा जन्म हुआ, शरीर के साथ हमारा मरण भी हो जाएगा,
आता जाता है, बढ़ते बढ़ते शरीर फिर एक स्टेज पे मृत्यु होती है,
शरीर बढ़ता है और मृत्यु होती है। और जब शरीर मर गया तो हम आत्मा भी मर गई।
हम कहते हैं हम वही हैं।
हाँ,
जैसे वस्त्र मतलब हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब आत्मा अमर है, शाश्वत है।
भगवान कह रहे हैं कि हम जैसे वस्त्र जो है पहनते हैं और उतारते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर को धारण करता है, शरीर को त्याग करता है, भगवान ही बताते हैं। हाँ, लेकिन एक और जो है बड़ा शक्तिशाली तर्क है जो गीता में भगवान ने दिया है, वो क्या है? एक बड़ा शक्तिशाली तर्क है। हाँ, भगवान ने बहुत मतलब एक बड़ा शक्तिशाली तर्क दिया है, हाँ, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, इस शरीर में जैसे अवस्था बदलती है, बचपन की अवस्था से जवानी की अवस्था, जवानी की अवस्था से बुढ़ापे की अवस्था बदलती है, हाँ, लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ, हाँ, 20 साल पहले का आपका शरीर, हाँ, उसका चित्र आप देखते हैं, हाँ, आप लोगों के पास होगा भी 20 साल पहले का चित्र होगा आपका, तो बिल्कुल बदल चुका है कि नहीं? अब तो कुछ भी नहीं मिलान होता है, 20 साल पहले आपका जो शरीर था उससे आपका कुछ मिलान नहीं होता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, ये मेरा चित्र है। अब क्या चीज़ है जो वही है जो नहीं बदली? आप हैं, आप कहते हैं 20 साल के बाद भी अगर आपका शरीर रहा तो शरीर बिल्कुल दूसरा होगा, बिल्कुल दूसरा शरीर होगा, और आप कहेंगे मैं वही हूँ, है ना? तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है, इसमें धीर पुरुष जरा भी भ्रमित नहीं होता, जरा इसमें क्या कठिनाई है समझने में, क्या कठिनाई? कितना सरल तर्क है, एक तर्क है इतना सरल है, इतना अच्छा, इतना सरल तर्क और कोई नहीं हो सकता कि भगवान ने दिया। अगर भगवान देते हैं कोई तर्क, इससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई तर्क नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सरल और कोई तर्क नहीं हो सकता। वैसे और भी तर्क हैं कि कई बच्चे जो पैदा होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, वो अपना पिछले जन्म की बात बताते हैं। कोई लड़की है 5 साल की, 7 साल की लड़की है, वो बताती है कि मैं उस गांव की बुढ़िया हूँ, अब अपना बुढ़िया का जो है बुढ़िया के रूप में परिचय देते हैं कि मैं बुढ़िया हूँ और मेरा ये लड़का है। अब वो 5 साल की लड़की है और 40 साल के आदमी को कहती है ये मेरा लड़का है, और वो अपना गांव का नाम बताती है, अपना घर और उसके घर में रहने वाले जितने सबका परिचय बताती है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो बताते हैं कि मैं वहां का आदमी हूँ, जवान आदमी हूँ, मैं जवान हूँ, वो छोटा सा बच्चा है, और 40 साल की जो स्त्री उसकी स्त्री है उसको कहते हैं ये मेरी पत्नी है, 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है 40 साल की स्त्री को अपनी पत्नी बताता है ये मेरी पत्नी है। और जब सब लोग पूछते हैं कि जरा परीक्षा करो ये तुम्हारा पति है क्या, तो बातें करके पता उसको लगता है कि हाँ ये मेरा पति है, क्योंकि ऐसी बातें बताता है जो कोई नहीं जानता, और 5 साल का बच्चा है और 40 साल की स्त्री को कहता है ये मेरी पत्नी। तो ये भी है एक तर्क, लेकिन इस तर्क में कमी है, इस तर्क में कमी है। क्या कमी है? क्योंकि केवल उतने ही बच्चे अपने पिछले जन्म की बात बता पाते हैं जो पिछले जीवन में भी मनुष्य थे, तो ऐसे भी बहुत कम केस होते हैं, ऐसे बहुत कम केस होते हैं कि मनुष्य से दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। जिनको पहले मनुष्य का शरीर प्राप्त था और इस दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और उसमें भी कुछ पुण्य कर्म हैं उनके, तो वे जो है बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। ये बहुत कम केस हैं, तो ये जो केस हैं ये पर्याप्त नहीं है। फिर तो ये कहा जाएगा कि भाई अगर कोई मरने के बाद दोबारा मनुष्य बना तब तो आत्मा का पुनर्जन्म माना जाएगा, लेकिन अगर वो पशु पक्षी की योनि में गया तो फिर कहाँ पता चलेगा, आप समझ रहे हैं? तो ये जो केस है, हालांकि हजारों हजारों केस हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जो अपने पिछले जन्म की बात बताते हैं, लेकिन तो भी ये पर्याप्त नहीं है तर्क कि सबका अगला जीवन है। फिर तो हम कहेंगे भाई ये इसका तो अगला जीवन हुआ है, लेकिन बाकी का अगला जीवन तो नहीं हुआ। कितने लोग मर रहे हैं तो उनका अगले जीवन का तो कुछ भी विवरण नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान ने जो तर्क दिया है, वो सबके लिए, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो। कितना सरल है और कितना शक्तिशाली है। ये शरीर में बदलाव आ रहा है, ये शरीर बदल रहा है, लेकिन आप कहते हैं मैं वही हूं। तो वो क्या चीज है जिसे आप कहते हैं कि मैं वही हूं? और जो व्यक्ति आत्मज्ञान के धरातल पर होता है तो उसकी आंखों के सामने ही इस शरीर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसको सभी के शरीर बदलते दिखाई पड़ते हैं, सब शरीर बदल रहे हैं। जैसे 10 साल में शरीर बदल जाता है, 20 साल में शरीर बदल जाता है, तो उसकी आंखों के सामने ही उसको दिखाई पड़ रहा है कि शरीर बदल रहा है, इनका भी शरीर बदल, इनका सबका शरीर बदल रहा है। कि उसके दिमाग में ये गीता की ये बात जो है रहती है कि 20 साल पहले ये शरीर कोई भी शरीर नहीं था, जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी का भी शरीर ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग शरीर था। और 20 साल के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी का भी शरीर ऐसा नहीं रहेगा, ना चेहरा रहेगा, चेहरा या शरीर कुछ भी नहीं रहेगा। ये चेहरा, कोई एक भी चेहरा नहीं था 20 साल पहले जितने यहाँ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं था यहाँ। और 20 साल के बाद ही किसी का भी ये चेहरा नहीं होगा जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, किसी का भी चेहरा नहीं रहेगा, सब चेहरे बदल जाएंगे सबके। तो ये दृष्टि है, और इस दृष्टि से व्यक्ति जो है फिर बहुत सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी चेतना में हमेशा ये रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये जो ज्ञान है, ये गीता का जो ज्ञान है, इसकी बहुत आवश्यकता है। और प्रभुपाद ने विशेष रूप से भगवान की जो बातें जिस तरह से भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद उसको उसी प्रकार से और प्रकाशित करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट का मतलब है कि भगवान जो कहना चाहते हैं उसको और हाईलाइट करते हैं प्रभुपाद, और ज्यादा उस चीज को। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम सबसे पहले कृष्ण की भक्ति नहीं बताते हैं, कृष्ण की भक्ति करो, कि कृष्ण की भक्ति अगर हम कहें कि आप करो कृष्ण की भक्ति, लेकिन आपके दिमाग में अभी ये विचार नहीं आया है कि अगला जीवन है, तो आप क्या कहेंगे? कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा लगे तो कृष्ण की भक्ति करो, और ना अच्छा लगे तो कृष्ण की भक्ति ना करो, क्या फर्क पड़ता है? मरने के बाद अगला जीवन है ही नहीं, तो कृष्ण की भक्ति से जो है करने से भी कुछ फायदा नहीं है, ना करने से भी कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपना जो है मनोरंजन है। अगर मनोरंजन होता है कृष्ण की भक्ति में तो कृष्ण की भक्ति करो, टाइम पास करने के लिए कृष्ण की भक्ति कर लो। अगर मनोरंजन हो रहा है हाँ तो उसमें टाइम पास हो रहा है तो कृष्ण की भक्ति कर लो। लेकिन जब व्यक्ति समझ लेता है कि अगला जीवन है तो टाइम पास वो करने नहीं देता, वो टाइम पास हो रहा है उसकी बड़ी चिंता होती है कि टाइम पास हो रहा है मेरा है? और मैं कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा हूँ और मेरा टाइम ऐसे निकल रहा है तो उसको चिंता हो जाती है, है? कि मेरा टाइम तो ऐसे निकल रहा है, कृष्ण की भक्ति हो नहीं रही है, मैं कैसे कृष्ण की भक्ति करूँ, कितना अधिक से अधिक कर लूँ क्योंकि यही मुझे लेके जाना है। तब फिर विचार करता है कि मुझे क्या लेके जाना है, तो वो जो लेके जाना है उसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करना है। तो फिर उसको जो है ये नहीं होता कि भाई अच्छा लगे तो करो, अच्छा ना लगे तो ना करो, वो नहीं होता है। फिर अच्छा लगे ना लगे है? जो अच्छा है वो करना ही है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा है तो करना है। कृष्ण की भक्ति ही अच्छी है। और अगर कुछ गलत काम आप कर रहे हैं तो ये आपके साथ जाएगा है? तो ना करो, ये आपको कष्ट में डाल देगा, ये घोर कष्ट में डालेगा। आप कोई गलत काम कर रहे हैं उसके करोड़ों करोड़ों गुना उसका जो है दंड मिलेगा है? तो ये नहीं करना है क्योंकि ये मेरे साथ जाएगा, मुझे अपने साथ ये लेके नहीं जाना है। और क्या लेके जाना है, अच्छी चीज लेके जाना है। तो कृष्ण की भक्ति कितनी अधिक से अधिक मैं कर लूं जिसको कि मैं लेके जाऊंगा। तो ये जो दृष्टि है ये गीता हमें दे रही है और विशेष रूप प्रभुपाद दे रहे हैं, इसलिए भगवद गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो है शोक करने की बात नहीं है। शोक करने की असली बात यही है कि मैंने कृष्ण की भक्ति की नहीं और मेरा इतना जीवन निकल गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आपका 40 साल का जीवन निकल गया, 50 साल का जीवन निकल गया, 60 साल का जीवन निकल गया और कृष्ण की भक्ति हुई नहीं, और कितने उल्टे सीधे काम हुए वो सब जो है मेरे साथ जाएंगे, जिनको मैं नहीं लेके जाना चाहता वो जाएंगे मेरे साथ, और जिनको मैं लेके जाना चाहता हूँ वो कृष्ण की भक्ति मैंने की नहीं। तो भगवान कह रहे शोक करने की जरूरत नहीं है, तो वास्तव में वो शोक करने का विषय नहीं है कि हमारे संबंधी हैं ये नहीं रहेंगे वो नहीं रहेंगे ये नहीं रहेंगे। शोक करने का विषय ये है कि हमारा जीवन इतना निकल गया और एक साल के बाद दूसरा साल निकलता है, दूसरे साल के बाद तीसरा साल निकलता है, है? और मेरी कृष्ण भक्ति तो हो ही नहीं रही है, है? और बेकार की सब जो है बातें चलती जा रही हैं और टाइम ऐसे ही पास होता जा रहा है, एक एक श्वास जो है निकल रही है निकलती जा रही है और मुझे कुछ भक्ति नहीं मिल रही है। भक्ति कैसे मिले मुझे, तो उसको फिर मनुष्य का जीवन जो है बहुत थोड़ा लगता है कि बहुत थोड़ा सा मनुष्य का जीवन मिला था और उसमें सिर्फ मेरे 40 साल निकल गए, ये तो बहुत नुकसान हो गया। अब कितना भी बचा है जीवन है तो हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा जितनी अधिक जितना अधिक से अधिक हो सके कर लो, है ना। तो ये जो है फिर उसको इस बात की जल्दी होती है, इस बात की उसको चिंता होती है। तो ये चिंता, तो ये चिंता जो है पैदा करने के लिए ही गीता का उपदेश है कि आपके अंदर ये चिंता पैदा हो। ये नहीं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ, ये नहीं है गीता का उपदेश, है ना। तो हमें जो है गीता के अनुसार चिंता करनी चाहिए है? कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, हमें चिंता करनी चाहिए, है ना। पशु की तरह नहीं है, गधे की तरह नहीं है, जो हुआ सो ठीक हुआ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तो गधे पशु हैं, है ना, हमें चिंता करना चाहिए, है ना। हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था और इतना जीवन आधा जीवन निकल गया, तीन चौथाई जीवन निकल गया, मैंने अभी तक क्या किया, और अभी भी कुछ पता नहीं कि 10 साल या 10 दिन मेरा जीवन रहेगा, ये भी पता नहीं है, है ना। इसलिए क्या करना है, सब लोग बोले हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धुरंधरा श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय। हरे कृष्णा।
सीता मित्र प्रभु की जय।